आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्योति है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट की है। हमने अपना हाफ चैप्टर, जो कि चैप्टर का नेम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो भी चीजें, जितने भी टॉपिक, उसको एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम मूव करते हैं अपने ऊर्जा संसाधन वाले सेकेंड पार्ट में। ओके, तो चलिए सबसे पहले खनिज के बारे में हमने डेफिनेशन जानी थी कि खनिज क्या होता है, इसे निकालने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंस है, ऑब्वियसली हम किसी चीज को जब हम निकाल रहे हैं या फिर उस पर मेहनत कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, इससे रिलेटेड ही होता है ये पूरा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है खनिज के कितने प्रकार है, खनिज कितने टाइप के होते हैं, इसकी वैरायटी क्या क्या है, जिसमें हमने खनिजों के प्रकार में धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा तीन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किए थे इसके। अब धात्विक में क्या था, लौह और अलौह, मतलब कि जो मेटलिक है और नॉन मेटलिक है। ओके, इतने तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं अधात्विक में, जिसमें सारे चूना पत्थर या जितने भी टाइप के नकाशीदार पत्थर जिस पर हम आज की डेट में नकाशियां देखते हैं, या बहुमूल्य पत्थर, या वो पत्थर किसी भी तरीके की जिससे हम कह सकते हैं इमारतें बनती हैं या महल बनते हैं या किले बनते हैं। पुराने जमाने के तो मोस्टली सारे जितने भी आर्किटेक्चर हमारे सैंपल्स अब हैं, वो सारे इन्हीं सारे पत्थरों से जो है बनते थे। और रही बात ऊर्जा वाले पोर्शन की, तो ये हम अपने सेकंड पार्ट में, जैसा कि मैंने कहा, डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि खनिज निष्कर्षण की क्या क्या विधियां हैं। अब खनिज निष्कर्षण एक बहुत ही भारी भरखम वर्ड है, तो हम चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करें। निष्कर्षण मतलब कि बाहर निकालना, ठीक है, निष्कर्षण यानी कि बाहर की तरफ निकालना, आकर्षण अपनी तरफ खींचना, निष्कर्षण जस्ट इसका अपोजिट वर्ड है। ओके, खनन, खनन तो नॉर्मल पता ही है, को खुदाई करके। दूसरा उसके बाद आ जाते हैं प्रवेधन, प्रवेधन है जिसमें हम, उसमें भी दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। खनन की तो पहले मैं बात करती हूँ, खनन की हूँ कि इसमें कितने टाइप के प्रोसीजर होते हैं। खनन एक खुदाई विवृत खनन होता है, जिसमें सिर्फ जो हमें पता होता है कि इसमें जो खनिज है वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, ऊपर की तरफ ही, तो हम विवृत खनन से इसे खनन करके निकाल लेते हैं। और कुप्की खनन में जब हमें पता होता है कि खनन मतलब खनिज जो है वो बहुत ही अंदर की तरफ है, अंदर है, गहराई में है, तो हम कुप्की खनन का प्रयोग करके जो है उस प्रोसीजर से खनिज को बाहर निकालते हैं। प्रवेधन में सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊंगी कि प्रवेधन खुदाई जो है वो एक तरीके से क्या हो गया कि दोनों ही जो कुप्की और विवृत है उसका मिक्सचर है, लेकिन इसे ज्यादा बड़े फैलाव में करते हैं ये काम। और आखनन सबसे सिंपल कि इसके लिए खुदाई नहीं करनी होती है, इसके बहुत कहते हैं पृथ्वी की परपट्टी पे ही ये मिलता है। तो यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास डेटा है जिसमें बताया हुआ है कि राजस्थान की किस जगह पे जो है कौन से खनिज तत्व मिलते हैं। ओके, और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि हमारा है ऊर्जा। ऊर्जा से आप लोग क्या समझते हैं, हमारी बॉडी के लिए ही अगर हम बात करें कि ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा क्या है, ये एक तरीके से एनर्जी है। एनर्जी तो हमने कह दिया कि हाँ ऊर्जा का इंग्लिश फॉर्म है। ये वो ताकत है जिससे हम लोग अपने काम करने के लिए पावर लेते हैं। ओके, इतना तो हम सबको पता है, जैसे कि अगर हमें अपनी बॉडी से मतलब अपने खुद को हमें काम करना है तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम जितनी भी कह सकते हैं पूरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो है हमें ऊर्जा देता है। सेम वही चीज़ प्रकृति के साथ या कह सकते हैं हमारी फैक्ट्रियों के साथ भी है। कैसे, या हमारे तीनों ही फैक्ट्रियों के नहीं बोलूँ, तीनों ही सेक्टर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं ऊर्जा के संसाधनों पर पूरी तरीके से डिपेंड है। अब पूछेंगे आप कैसे, ये ऐसे कि अगर बात करें हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की, ओके, कृषि की, तो इसमें अगर आप जमीन में कोई चीज बो रहे हैं यानी कि उगा रहे हैं, आपने उपज की है, कह सकते हैं कि इंटरनल कोर्स नहीं होगा या तो हमें कोई भी एग्रीकल्चर में आउटकम नहीं मिलता। सेकंड आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्या है रिलेटेड ऊर्जा का टॉपिक, कि अगर हमारे पास जितने भी ईंधन हैं, ये कह सकते हैं जितनी भी मशीनें हैं, वो सारी किसी ना किसी तरीके से ईंधन से ही डिपेंड करती है, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो। ओके, तो ये इस तरीके से रिलेट करती है। और बात करें हम थर्ड सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, तो इसका तो नो डाउट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CNG, उसके अलावा पेट्रोल, डीजल। इसके बाद हम मूव करते हैं कि किस तरीके से पेट्रोलियम और खनिज तेल जो है वो रिफाइन किया जाता है, किस तरीके से यूज होती है, एंड ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूं कि पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि पेट्रोलियम और पेट्रोल का क्या है इन दोनों में डिफरेंस। पेट्रोलियम बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, बहुत सारी जितनी भी हम ऊर्जा के, जितने भी हमारे कह सकते हैं पारंपरिक संसाधन है, इसमें वैक्स होता है, इसमें डीजल होता है, उसमें कह सकते हैं पेट्रोल होता है, उसमें जितनी भी चीजें हैं, केरोसिन ऑयल, इन सब का मिक्सचर है, या कह सकते हैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ होता है, जिसमें से बहुत सारे जो जितने भी हमारे ऊर्जा के संसाधन है वो सब चीजें निकाली जाती है, मतलब उसे रिफाइन करके निकाली जाती है। ओके, उसमें से ही एक आ जाता है हमारा पार्ट पेट्रोलियम, जिससे हमारी कार चलती है। उसके बाद बात करें हम, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला था पारंपरिक, पारंपरिक और अपारंपरिक या गैर पारंपरिक, ठीक है, या फिर बात करें नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो एग्जाम के लिए मैं वैसे बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप कभी भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना इन सब चीजों से रिलेटेड, तो क्वेश्चन बहुत मस्ट आता है कि आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर समानता स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या इन सब में डिफरेंस है। नवीकरणीय की बात करें तो ये वो सारी एनर्जीज होती हैं, अभी हम पेट्रोलियम वाले पार्ट को वहीं पे रिज्यूम करके तब आगे बढ़ रहे हैं कि नवीकरणीय वो जितने सारी एनर्जीज होती हैं जो कि रिन्यूएबल है, उसे बार बार रीयूज किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई या फिर हमारी वाटर रिसोर्सेज हो गए, ये जितनी भी सारी विंड एनर्जी होगी, ये जितने भी चीजें हैं इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है एक बार खत्म हो जाए तो ये बहुत लाखों अरबों खरबों सालों में बनता है, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने जितने भी ये रिसोर्सेज हैं अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसका बहुत ही कह सकते हैं विवेकतापूर्ण तरीके से इसको यूज करना चाहिए, बहुत रेशनली यूज करना चाहिए, उसके लिए इतने सारे कैंपेनिंग वगैरह भी होते हैं। अब बात करें कि परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या है। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो हम बहुत सालों से यूज कह सकते हैं वही हम यूज ही कर रहे हैं अपनी एनर्जी के लिए, मतलब कि जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, जितनी भी चीजें ये सारी हैं, इन्हीं का हम यूज करते आ रहे हैं, तो हम करते आ रहे हैं इसी का यूज, कोई न्यू इनोवेशंस नहीं है। जैसे सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, ये ऐसी कुछ कह सकते हैं रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, सूरज कभी खत्म नहीं हो सकता, पानी कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हम इस चीजों की जो है यूज नहीं करते इसे अपने एनर्जी, बल्कि इसे एनर्जी जनरेट की जा सकती है, फिर भी हम इन गैर परंपरागत स्रोतों को यूज नहीं करते। तो यही डिफरेंस है परंपरागत जो कि चला आ रहा है तो इसलिए वो चला ही आ रहा है, और गैर परंपरागत वो है जो कि जिसमें इनोवेशंस हो सकते हैं, वो बेस्ट है उससे, क्योंकि कह सकते हैं पोल्यूशन नहीं होता, वो खत्म नहीं हो सकता, जबकि परंपरागत से पोल्यूशन भी होता है तब भी हम उसे यूज कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, और समानताएं क्या है, समानताएं ये है परंपरागत और गैर परंपरागत में कि इन दोनों को ही यूज करने के लिए इनके कह सकते हैं प्लांट एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, दोनों ही खर्चीले हैं। ये डिफरेंशिएशन जो है अगर हम अपने बुक में देखें, जो कि बुक में बहुत अच्छे से मेंशन हो रखा है कि किस तरीके से नवीकरणीय और अनवीकरणीय को इन लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है, इस टेबल को एज इट इज जैसा कि ये है वैसे ही आप पॉइंटर बना के भी अपना आंसर है लिख सकते हैं, और इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि जो भी आंसर है वो कितने नंबर का होगा। ओके, इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पे कोयले की। पेट्रोलियम हमारा पहला हो गया खनिज पदार्थ, जो कि, और ये किस कैटेगरी में आता है, परंपरागत और अनवीकरणीय, ये दोनों के ही एग्जाम्पल में पेट्रोलियम जो है फिट बैठता है, और हमने ये चीज रिमाइंड करके रखी है एकदम कि पेट्रोलियम और पेट्रोल जो है वो दोनों अलग चीज है। पेट्रोलियम से सारे और जितने भी हमारे कह सकते हैं फ्यूल निकलते हैं और पेट्रोल उसी का एक पार्ट है। उसके बाद बात करें हम कोयला की, तो कोयला जो है वो चार टाइप के होते हैं अगर हम टाइप की बात करें इसमें। तो सबसे पहला यहाँ पे जैसा कि बुक में दे रखा है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इन सब की अपनी अपनी कुछ कुछ खासियत है, जैसा कि अगर ये चार उसमें कैटेगरीज में क्लासिफाई हो रखा है तो इसकी कुछ कुछ अपनी खासियत भी है। जैसे कि एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो देखिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 80% कार्बन होता है, क्योंकि नो डाउट कार्बन में जो है कोयले में जो है सबसे ज्यादा कार्बन होता है। और यहीं पे मैं एक ब्रेक लूंगी थोड़ा सा कि पहले हिस्ट्री में एक थोड़ी नजर फिराते हैं। तो आपने सुना होगा कि टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो किसी भी कह सकते हैं किसी भी जितना भी आप मोटे से मोटे लोहे की चादर वाला जो कहते हैं कि ढाल उनके सामने रखे, लेकिन वो फिर भी उसे चीर देती थी। ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक बहुत सारे लोग अपने अपने कहते हैं, साइंटिफिक रीजंस देते हैं, पर जो बेसिक साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि पहले ऐसा हर जगह फेमस नहीं था इस तरीके की खास तलवारें। सिर्फ ये कह सकते हैं मैसूर में ही सबसे ज्यादा फेमस था कि वहाँ की जो तलवारें होती थी, स्पेशली वो भी जो कह सकते हैं कि राजाओं के यहाँ की, उसमें जब हम लोहे को प्रगलन करते हैं ना, पिघलाते थे तलवारें बनाने के लिए, तो उसमें कोयले का प्रयोग भी करते थे, मतलब कि कोयला भी उसके अंदर डालते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन होता था और उससे जो है, एक तो पहली बात कि जो हमारी तलवार है उसमें जंग नहीं लगता था, और दूसरा इससे हम कह सकते हैं कि लोहा जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, और वो दूसरे जो लोहा है मतलब कि जो ढाल के रूप में लोहा है उसको काटने में सक्षम था। इसके बाद बैक टू आवर टॉपिक, इसमें सेकंड जो है वो हमारा दे रखा है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वो लिग्नाइट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ओके, इसके बाद बात करें हम लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा अच्छी किस्म का और सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है, जैसे कि बीकानेर रीजन जो हो गया, बरसिंह नगर या पलाना, बाड़मेर, जलीपा, कुरपुरी, गिरल, जैसे भी ये सारे जितने भी रीजन हैं उन सब में लिग्नाइट जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसके बाद बात करें कि लिग्नाइट का यूज क्या क्या है। अगर ये इस जगह पे इस रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली इस जगह पे इसका इस्तेमाल और बहुत सारे देश के और हिस्सों में भी इसका यूज होता होगा। इसका यूज जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है, और राजस्थान में कह सकते हैं कि प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कोटा, सूरतगढ़, इन दोनों जगह पे है। और लेकिन ये पर्यावरण के लिए जो है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा कह सकते हैं पॉल्यूशन होता है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि परंपरागत स्रोत बहुत कह सकते हैं लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, अभी भी यूज में आते हैं, लेकिन इनसे जो सबसे ज्यादा एक बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो यही रहा है कि इससे पॉल्यूशन बहुत होता है, जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत है उनसे पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन वो कह सकते हैं महंगे सेटअप है उन्हें लगाने में। और दूसरा चीज ये भी है कि उससे इनोवेशन अभी उतने नहीं हुए हैं कि उन्हें हर जगह लगाया जा सके। इसके बाद बात करें कि पेट्रोलियम या खनिज तेल जो है, पेट्रोलियम जिसमें से सारे खनिज तेल निकलते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम दोबारा से रिपीट नहीं हुआ है, उसके साथ खनिज तेल को भी इन्वॉल्व किया गया है कि सबसे ज्यादा जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में पूछूँ तो सबसे ज्यादा खनिज तेल का यूज जो है वो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स में है उसी में लगता है। ओके, कोई भी जितनी भी गाड़ियां हैं वो इसी से चल पाती हैं। पेट्रोलियम केरोसिन भी जो है वो भी पेट्रोलियम से निकलता है। पेट्रोलियम नो डाउट एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हमारे लिए रिसोर्स है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में खनिज तेल कहाँ पे ढूंढा गया था, तो ये असम में ढूंढा गया था, और आज के प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो बॉम्बे हाई अरब सागर के जो पास में स्थित है वो सबसे कहते हैं इम्पोर्टेंट जोन बन चुका है खनिज तेल का। राजस्थान की अगर बात करें तो खनिज तेल और पेट्रोलियम दोनों ही जो है वो कह सकते हैं वेस्ट जोन जो बाड़मेर का है, बाड़मेर में मंगला सरस्वती ऑयल फील्ड, और जैसलमेर में घोटारू, तनौट और मनिहारी टिब्बा, ये जितने भी रीजन्स है यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज जो है वो वहीं से प्रोडक्शन होती है। और जो जगहों की बात करें कि कौन कौन सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये सारी चीजें कह सकते हैं इन सारे खनिज जो जितने भी हमारे पदार्थ है वो मिलते हैं, तो बीकानेर, जालौर इन सारे जिलों की तरफ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवसादी चट्टान बहुत ज्यादा है। अब अवसादी चट्टान से क्या मतलब है? अवसादी चट्टान से मतलब है अवसाद। अवसाद का मतलब आप सभी जानते हैं कि जितने भी कह सकते हैं हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उनके जब अवसाद बनते हैं लेयर टू लेयर जब बनने लगती है और वो काफी सालों तक अरबों खरबों सालों तक वैसे ही वो लेयर बनती जाती है, तो वो एक तरीके से अवसाद बन जाते हैं, उसी के अवसाद चट्टान बन जाते हैं और उसी जगह से हमें सारे जो खनिज तत्व है वो सब कुछ मिलता है। इसके अलावा बात करें कि प्राकृतिक गैस कौन कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम से मिलती है उसे भी हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। कौन कौन सी पेट्रोलियम गैस है? प्राकृतिक गैस जैसे जितनी भी प्राकृतिक गैस है वो सारी चीजें यहीं से मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कह सकते हैं सबसे ज्यादा यही प्रदूषण मतलब तो पेट्रोलियम से मिलने वाली जितनी भी कह सकते हैं हमारे प्राकृतिक गैस है वो प्रदूषण फैलाते ही है। इसके बाद बात करें हम जल विद्युत की, तो जल विद्युत कौन सी कैटेगरी में आता है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ये आता है हमारा गैर परंपरागत और उसी के साथ नवनीकरणीय, क्योंकि जल का आपने सभी ने साइंस में पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल एक चलता है। वाटर साइकिल यानी कि पानी जो है वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है, वो खत्म नहीं होता। पानी को हम ना बना सकते हैं और ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में वाटर वेपर्स की फॉर्म में या फिर वो पानी की ही फॉर्म में या फिर वो दोबारा से जब रेन ड्रॉप्स बन के आता है उस फॉर्म में वो रहता ही रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा यूजफुल जो रिसोर्सेज है हमारे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसे रिन्यू कर सकते हैं। अब इसकी खासियत से जरा गौर करते हैं, जैसे कि हमारे बुक्स में इस बुक में लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऊर्जा का संसाधन तो है ही नो डाउट, और इससे पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अभी के आप करंट इश्यूज अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं एनवायरनमेंट को लेके कितनी ज्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी इसका जो कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बात करें कि इसके एक तो खत्म नहीं होने वाला है सोर्स है, इसलिए खत्म नहीं हो सकता, इसका हम रीयूज कर सकते हैं। और जब भी जो कह सकते हैं बारिश के दिन होते हैं उसमें जितनी भी नदियां होती हैं वो भर जाती है, तो हमें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में उस वक्त हमें रिसोर्स जो है वो अवेलेबल होता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर बात करूँ कि कहाँ कहाँ पे ये पूरा जो प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी के बनाने के लिए लगाया गया है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना जितनी भी है ये सारी की सारी जल विद्युत के लिए है। इसके बाद बात करें हम राजस्थान के कंटेक्स्ट में, तो राजस्थान के कंटेक्स्ट में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो है चंबल और माही बजाज सागर की, और साथ ही बहुत सारे छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं राज्य में ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जा सके। पर हम सभी ये बात जानते हैं कि राजस्थान का जो रीजन है वहाँ पे पानी इतना ज्यादा नहीं है कि उससे इस जल विद्युत के जो प्लांट है वो लगाए जा सके। यही इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जिस जगह पे पानी की समस्या होती है या जिसमें 12 माह जिस राज्य में पानी नहीं होता या फिर जहाँ बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा होती है उस जगह पे ये जो प्लांट है, क्योंकि प्लांट बहुत महंगे इस्टेब्लिश किए जाते हैं वहाँ पे नहीं लगाए जाते। इसीलिए और आपने ये चीज़ गौर की होगी कि हमारे जितने भी अभी 3-4-5 सालों की ये स्टडी है कि हमारे किसी ना किसी राज्य में मोस्टली ज़्यादातर राज्य में ऐसा होता है कि अचानक से वहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है और अचानक से वहाँ सूखा की, तो ये जो डिसबैलेंस होता है एनवायरनमेंट के कह सकते हैं क्लाइमेट में, इस तरीके से भी कोई भी इतने हैवी प्रोजेक्ट के साथ चांस नहीं लेना चाहता, इसीलिए ये प्लांट सेट नहीं हो पाते। लेकिन इसके हम अगर गौर करें कि क्यों इस चीज के लिए क्योर क्या है, तो एक ये भी है कि अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें वाटर हार्वेस्टिंग से, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि कह सकते हैं वर्षा ऋतु के टाइम पे सबसे ज्यादा पानी जो है वो हमें अवेलेबल होता है। अगर हम सारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वो अपने घरों के ऊपर सेट करें तो फर्स्ट हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हमें सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति नहीं रह सकती आती, उसके अलावा अगर हम सारे अपनी सोसाइटी में थोड़ा बहुत भी जो ट्रीज है उसे मेंटेन करके रखें, अपनी सोसाइटी को कंक्रीट के जंगल ना बनाएं और उस जगह पे पेड़ रखें, तो सॉइल में जो हमारे पानी की पकड़ होती है उसकी वजह से जमीन में नमी रहती है, जिससे बाढ़ की स्थिति कभी नहीं आती। बाढ़ की स्थिति अब ज्यादातर उन्हीं कह सकते हैं राज्यों में आती है जिस राज्य के कह सकते हैं नदी के किनारे पेड़ नहीं होते, बिकॉज पेड़ जो है वो किसी न किसी तरीके से उस जगह के पानी को, वाटर को जो है कंट्रोल करके रखते हैं उनकी जड़ों के थ्रू, जिससे वो पानी जो है वो रिसिस्ट होता है। लेकिन जब वो पेड़ हटा दिए जाते हैं किसी न किसी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल कॉज के लिए या किसी चीज के लिए भी, तो वो जो बैरियर होता है वो हट जाता है और वो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी सीजन में होता है क्योंकि उस टाइम पे पानी जो है वो एक्सेस होता है। होप कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर जल विद्युत के क्या फायदे हैं, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं, अगर इसे कोई अच्छे से यूज करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन हाँ, यही में मैं एक और चीज अब ऐड करती हूँ इसमें कि आप सबने सुना होगा नर्मदा नदी परियोजना, जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया था उसके बारे में। सरदार सरोवर डैम एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था जिससे बहुत सारे लोगों को जो है नर्मदा नदी के किनारे से हटाया गया था, उनके जितने भी रेजिडेंस थे उनको हटाया गया था। हाँ, उन्हें अलग जगह रहने के लिए जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी, लेकिन इसके बहुत सारे, अगर हम कभी भी इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हुए। नुकसान वो हुए, एक तो बहुत सारे लोगों को जो है अपनी कह सकते हैं पुश्तैनी जमीनों से उन्हें हटना पड़ा, उनका जो कह सकते हैं पूरा कल्चर का उन्मूलन हुआ, वो उनके लिए सबसे एक कह सकते हैं बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें खराब हुआ। इसके अलावा जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें रिलेटेड थी, क्योंकि नर्मदा नदी से बहुत सारे लोगों की जो है रोजगार उसी पर डिपेंड थे, उस नदी पर, क्योंकि आपने देखा होगा मछुआरे हो गए या जितनी भी कहते हैं ना जितनी भी नदी किनारे जितने भी व्यापार के तरीके हैं वो सारे बंद हो गए उस प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन उससे फायदे क्या हुए, उससे फायदा ये हुआ कि वो जो पूरा प्लांट था वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था, और उसको उस तरीके से पूरा यूज हुआ भी, जो हाल ही में अभी उसका उद्घाटन भी हुआ, जब हमारा सरदार सरोवर स्टैचू ऑफ यूनिटी जब बन के तैयार हुआ उसके साथ ही ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन भी हुआ था। लेकिन इसमें ये जल विद्युत प्लांट था, एक चीज में मेंशन इधर और कर दूं, लेकिन उसके साथ तीसरी जो चीज हुई वो क्या, जब भी हम किसी नदी में या किसी भी समुद्र पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें थर्ड फैक्टर क्या आता है, एक तो वहाँ पहला फैक्टर कि वहाँ जो भी आसपास में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दूसरा इफेक्ट पड़ता है उस नदी के ऊपर, उस नदी के ऊपर एक राइट वे में, कि उस नदी के जो वाटर से हम वाटर रिसोर्सेज से हम कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा इफेक्ट जो कह सकते हैं वो जियोग्राफी के कंटेक्स्ट में है कि वहाँ जितने भी कह सकते हैं वाटर एनिमल्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उन्हें या तो उस जगह से रीशिफ्ट किया जाता है उस पूरे हैबिटेट का जो उनका होता है, या तो जब वो प्रोजेक्ट बन रहा होता है वो उस वक्त पे जो है मर जाते हैं। तो ये तीसरी चीज़ जो निकल के आती है, इन सभी के ऊपर बहुत सारे कह सकते हैं पिटिशन्स लगाए गए थे कि ये जो है वो गलत है, लेकिन इन लास्ट क्योंकि प्रोजेक्ट से हमारे जितने भी फायदे थे या कह सकते हैं जितनी भी डेवलपमेंट थी वो ज़्यादा थे, इसी वजह से अप्रूव भी किया गया और इसे बनाया भी गया। इसके बारे में और डिटेल से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है सरदार सरोवर डैम का, जितना भी नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, तो आप इसको एक असाइनमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि असाइनमेंट सिर्फ उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसे पढ़ना, उसके फैक्ट पढ़ना, उस चीज़ को पूरा एनालाइज करना, ये है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये भी एक असाइनमेंट है जो करना है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सौर मतलब सूरज और ऊर्जा मतलब एनर्जी। सौर ऊर्जा का अगर हम अब देखें तो इसका विद्युत ऊर्जा का तो हम प्लांट्स में से नहीं देख पाते हर कोई इसके लिए, क्योंकि ये नदियों में या किसी समुद्र में प्लांट को जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन सोलर सिस्टम जो है पूरा वो हम देख पाते हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं अब धीरे धीरे ये उस जगह पे लगाए जा रहे हैं ताकि इसका जो है प्रचलन हो सके। सबसे पहली बात यह है कि सौर ऊर्जा किस किस तरीकों से अब यूज की जा रही है और इसके क्या और इनोवेशन हैं जो रहते हैं। इसके बहुत सारे नंबर ऑफ कह सकते हैं प्रोज हैं, नंबर ऑफ कॉन्स, लेकिन हम फिर भी ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी के जो आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी है यूज की वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इसका जो कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट है हर गवर्नमेंट एंटिटी में, उससे हम कह सकते हैं कि ये आने वाले वक्त में इसमें इनोवेशन एक तो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा क्योंकि सोलर जो हमारा सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये भी किस कैटेगरी में आता है, रिन्यूएबल कैटेगरी में आता है और गैर परंपरागत में आता है, क्योंकि इसे हम पुराने वक्त से यूज नहीं करें। इसके जो हमारे पुराने हमारे कह सकते हैं सिर्फ धूप लेने के लिए विटामिन डी या फिर जितने भी हमारे बेसिक डेली वर्क्स की चीजें हैं सिर्फ उसी में हम अपने सौर ऊर्जा का यूज करते हैं। किस तरीके से हम सौर ऊर्जा को स्टोर करके उसके बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज करें वो आज भी एक बहुत ही ज्यादा हार्ड चीज है। इसके अलावा बात करें कि भारत में इस चीज की क्या इम्पोर्टेंस है, पहले हम भारत की बात करेंगे देन हम राजस्थान की बात करेंगे कि दोनों कंटेक्स्ट में क्या है। इंडिया क्योंकि एक ओशन कटिबंधीय रीजन में आता है इसीलिए यहाँ पे कैसे आपने देखा होगा कि 12 महीने यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो मिलती है। कई देश ऐसे हैं जहाँ धूप की रोशनी जो है नहीं आ पाती या फिर बहुत ज्यादा कम समय के लिए होती है, इसीलिए उस जगह पे सौर ऊर्जा का यूज नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि भारत ऐसे कह सकते हैं ज्योग्राफिकल रीजन में आता है कि उसे सूरज की जो सोलर लाइट प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसीलिए इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं कि हम इसे किसी न किसी तरीके से अब आने वाले वक्त में यूज करें। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिर भी बहुत ज्यादा बहुत सालों से प्रचलन में है, प्रचलन में मतलब कि उसके आइडियाज हैं, इनोवेशन हमको पता है कि उसका यूज कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहें कि वो चीज आज भी इतने ज्यादा अच्छे से यूज में नहीं आ पाई है जितनी उसे आनी चाहिए। जैसे कि आप अपना रिमाइंड करें, ये बहुत सालों से ये चीज है कि अगर हम अब जब भी अपने जब सोलर सौर ऊर्जा की बात होती है या फिर स्कूल में जब भी मॉडल्स की बात होती है तो हम में से अधिकतर लोग सोलर कुकर बनाते हैं, ये बात सच है, लेकिन सोलर कुकर का यूज हम कितना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें सोलर बैटरीज का तो इसका भी सेम वही इशू है कि अगर हम जो सोलर बैटरीज हैं उसे यूज करते हैं तो वो कुछ समय बाद जो है अपनी जो भी उनकी पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं लाइनअप अगर हम इन सबको करें। अब इन सारे एग्जाम्पल से हम क्या एक कह सकते हैं, एक चीज जो हम फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करते हैं कि सोलर एनर्जी को फिर भी रिस्टोर करने के जितने भी तरीके हैं, क्योंकि सारे जो भी हमारे पास इनोवेशंस अब तक के निकल के आए हैं वो सारे एक छोटे पैमाने पे हैं। अगर हम इतने छोटे पैमाने पे भी अपनी सोलर एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस तरीके से इसे एक सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये एक चैलेंजिंग चीज है। लेकिन अब क्योंकि ये चीज जो है वो इनोवेशंस में आ गई है, बहुत जगह सोलर प्लांट्स भी जो है वो एस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन इसका अभी भी सबसे ज्यादा एक ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना कि ये सोलर सिस्टम या ये इनोवेशन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अवेटेड रही है और बहुत ज्यादा बढ़िया है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है या बहुत सारी चीजें, उसका कॉस्ट या उसके एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए प्रचलन में भी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है क्योंकि इंडिया एक गरीब देश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है परंपरागत स्रोत पे एक तो निर्भर भी रहा जाता है और दूसरा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, और तीसरी चीज है कि क्योंकि सोलर सिस्टम जो है सोलर प्लांट जो है वो इतना महंगा होता है कि इसे ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और चौथी चीज ये भी है कि इसकी अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं है। अगर हम इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलाएं तो हम देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में लोग इसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं अपना रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी साथ अगर कंटिन्यू करें कि हम और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं या और कौन से ऐसे ईंधन हैं जो सबसे ज्यादा यूज में लाया भी जा सकता है और उससे प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो बायोगैस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ग्रामीण इलाकों की, ये सौर ऊर्जा से हटके थोड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें ईंधन की बात हो रही है, तो ये जो बायोगैस ईंधन है ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हमारे भारत में जो 70% रीजन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड है तो जब भी हमारे दोनों जितने भी हमारी फसलों का वक्त होता है, एक रबी और एक खरीफ, वो निकलता है, उसके बाद बहुत सारा जो है हमारे फसलों का कह सकते हैं वेस्ट पार्ट बचता है। अगर हम उसे बायोगैस में तब्दील कर दें और उससे ईंधन बनाए तो शायद से इससे पॉल्यूशन भी सबसे कम होगा और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कि हमारे ईंधन के रूप में ग्रामीण इलाकों में यूज करने का। इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आता है हमारा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इसके नाम से ही जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये पवन चक्की से जो भी बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि राजस्थान जैसा रीजन है वो बहुत ही खुला है और वहाँ पे रेगिस्तान है, तो इसीलिए जल विद्युत इतना ज्यादा वहाँ पे नहीं हो सकता, नहीं वहाँ पे मेंटेन किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वो इतना खुला मैदान है इसीलिए उस जगह पर स्पेशली जैसलमेर और प्रतापगढ़ जैसा जो रीजन है वहाँ पर पवन ऊर्जा के विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा भी भरपूर है, उसके साथ साथ यहाँ पे खुला मैदान होने की वजह से यहाँ जो पवन चक्की के लिए जितना भी बड़ा एरिया हमें चाहिए होता है वो मिलता है। पवन चक्की के साथ सबसे ज्यादा ड्रॉबैक एक यही है कि ये कह सकते हैं पहाड़ी पठारी जितने भी इलाके होते हैं ऐसे, जैसे हमारा नॉर्थ रीजन हो गया या जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं उस जगह पे हम पवन चक्की इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, या उस जगह पे भी नहीं जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ओके, इसी के साथ बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा एटम एनर्जी है। हालांकि एटम एनर्जी को सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं छोटे से मॉलिक्यूल से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी मिलती है। यूरेनियम और थोरियम जो रेडियो संक्रिय खनिज होते हैं उसके भारत में सबसे ज्यादा ये कहाँ, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। बुक में दी हुई इस इमेज पे गौर करें तो इसमें रावत भाटा परमाणु बिजली घर का एक इमेज दिया हुआ है। ये राजस्थान के कोटा में एस्टेब्लिश है। परमाणु ऊर्जा के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आगे के फ्यूचर में। अब बात कर लेते हैं इन लास्ट सब पूरे जितना भी हमारा चैप्टर रहा उसके इन शॉर्ट क्या इस चैप्टर का जो है मेन मोटो है हमारे ज्योग्राफी के एरिया में कि किस तरीके से जितनी भी ऊर्जा के जितने भी खनिज संसाधन है ऊर्जा के स्रोत है वो किस तरीके से हमें इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरीके से इनका फैलाव है, किस वजह से ये जिस भी रीजन में जिनके प्लांट एस्टैब्लिश है वो क्यों है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। लेकिन क्योंकि अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है तो आप इसके लिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जितने भी रीजन दिए हुए हैं ना और उस जगह पे कौन से ऐसे प्लांट एस्टैब्लिश है वहाँ पे ये चेक करिए और उसके बाद उसके प्रोज और कॉन्स एनालाइज कीजिए।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।